नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था। इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल R.N. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार का नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए मौजूदा विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।